ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، اور پکاریں گے جنت والے آگ والوں کو. اب یہ جنت والے جو ہوں گے جنت میں اپنی چلے گئے، اب یہ پکاریں گے ان کو، تو کیا کیسے پکاریں گے؟ شاید 1400 سال پہلے لوگ اس بات کو سمجھ نہ سکتے ہوں، مگر سبحان اللہ آفرین ہے ان کے ایمان پہ کہ وہ یہ کوشچن نہیں کرتے تھے کہ یا رسول اللہ وہ جنت میں بیٹھے ہوں گے، وہ کیسے پکار کے جہنم والوں سے بات کر سکتے ہیں، اتنی دور سے بات کیسے ہو سکتی؟ انہوں نے نہیں یہ کوشچن کیا. پتہ نہیں ہے ہمارے جیسے تو ہر چیز پہ ہی کوشچن کرنے لگتے ہیں نا، یہ پھر کیسے ہو سکتا ہے، یہ پھر کیوں ہو سکتا ہے. لیکن آج تو اللہ تعالیٰ نے ساری اس قسم کی باتوں کو ختم کر دیا کہ ہم کہاں سات سمندر پار بیٹھے لوگوں کے ساتھ تصویر بھی ان کی دیکھتے ہیں، ان سے بات چیت بھی کرتے ہیں، جبکہ ہمارے قریب بھی نہیں ہوتے، ایسے ہی بات کر رہے تھے جیسے ہمارے ساتھ بیٹھے. تو آج تمہارے لیے سمجھنا مشکل ہی نہیں ہے، صحابہ نے کیسے اس کو سمجھا ہوا، اور بس وہ تو سمینا و اتانا کرتے تھے نا. تو جنت تو بہت اوپر ہے، بہت بلندی پہ ہے، اس کی تو خوشبو ہی 500 سال پہ آتی ہے، تو جہنم کہاں ہوگی؟ وہ تو ایکسٹریم پستی میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھاری پتھر بھی اگر جہنم کے کنارے سے پھینکا جائے 70 سال وہ چلتا رہے گا تو تب جا کے وہ اس کے باٹم تک پہنچے گا. اور 70 سال کوئی بڑے نمبر کے لیے بتایا جاتا تھا، 70 کا مطلب صرف 70 نہیں ہوتا تھا، جو بہت بڑا کوئی بات بتانی ہوتی تھی تو 70 کہا جاتا تھا. تو جہنم میں بھی وادیاں ہیں، اس کے اندر بھی کنویں ہیں، اس کے اندر بھی استغفر اللہ ایسی جگہ ہیں. تو وہاں تک وہ بات ان کی جا رہی ہے، وہاں تک وہ ان کو پکار رہے ہیں. تو اب بات ہمیں بہت آسانی ہے سمجھنے میں کہ یہ کیسے ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کے سسٹم، یہ تو انسانوں نے بنا لیے، اللہ تعالیٰ کے سسٹم کو تو ہم جان ہی نہیں سکتے کہ وہ کیسے ہوں گے. تو جنتی اپنی جنت میں بیٹھے ہوئے لیکن وہ ان کو دیکھ سکیں گے، ان سے بات کر رہے ہیں، ان کو پکار رہے ہیں. ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ ہمیں تو جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا تھا، ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا، بالکل سچ ہوا کہ عمل کر کے آؤ گے، ایمان اور صالح عمل لے کے آؤ گے تو جنت ملے گی، اور ایسی ایسی جنت ہوگی اور ایسی خوبصورت ہوگی. بالکل جو وعدے ہم نے سنے تھے نا وہ بالکل سچ ہیں، بالکل سچ ہوئے ہمارے لیے، سارے وعدے ہم نے سچ پائے، ویسے ہوا جیسے ہم نے سنا تھا. فَحَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تو تم اپنے بارے میں سناؤ، اپنی سناؤ، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو جو تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیے تھے سچا پایا؟ کہ دیکھو یہ کرو گے تو یہ ہوگا اور ایسی جہنم ہوگی اور ایسا ہوگا، کیا تم نے بھی اس کو صحیح پایا؟ وہ کہیں گے نعم، ہاں، یعنی وہ اعتراف کریں گے کہ واقعی وہ باتیں سچی تھیں. آج جن باتوں کہتے ہیں نا چھوڑو پرے، یہ تو ایسی بنائی بھی باتیں ہیں، وہ چھوڑو بس دیکھا جائے گا جب ہوگا، اور کچھ نہیں ہو جاتا، کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ ایسے اتنی سی بات کے اوپر نہیں کوئی پکڑ لیتا، بس ہی وہ غفور الرحیم ہے، بس سب کچھ ہی معاف ہو جانا ہے، سب نے ہی جیسے ایک ساتھ ہی جنت میں چلے جانا ہے، کرو جو مرضی کرنا ہے، من مانی زندگیاں گزارو، کچھ بھی فکر کرنے کی تو ضرورت ہے ہی نہیں، سوچنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. یہ نہیں، تو یہ تو وہ کہیں گے کہ ہاں واقعی جیسے ہمیں کہا گیا تھا نا، ویسے ہی ہم نے بھی پایا. یہ کتنی دکھ بھری یہ جواب ہوگا کہ وہ ایکسیپٹ کریں گے کہ ہاں جب کہا گیا تھا نا یہ کرو گے تو اس کے لیے یہ جہنم ہے، یہ کرو گے تو دردناک عذاب ہے، عذاب علیم ہے، یہ کرو گے تو عذاب عظیم ہے، یہ کرو گے تو عذاب مہین ہے. آج تو کہاں سمجھ آتے ہیں عذاب علیم کیا، عذاب عظیم کیا، پڑھ تو لیتے ہیں لیکن اہانت والا عذاب کیسا ہوگا، رسوائی کا کیسا ہوگا، درد کا کیسا ہوگا، بڑا عذاب کیسا ہوگا، کوئی پتہ نہیں ہے. نہیں 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 وہاں پہ سب سمجھ آ جائے گی، وہ کہیں گے ہاں، اور اس ہاں میں کتنا درد ہوگا سوچے، اس میں ساری اس زندگی کا دکھ ہے کہ ہم نے کیوں ایسا کیا، پھر جب پتہ بھی تھا، اس کا مطلب ان کو پتا تھا نا، جب ہی تو وہ یہ جواب دینے نام، ورنہ وہ کہتے ہمیں کیا پتا اللہ کے وعدے کیا تھے، ان کو پتا تھا، انہوں نے سنا تھا، دے ہیڈ دا نالج، ماننے کی زحمت ہی نہیں کی. بات سمجھ آئی؟ اس میں بڑی ڈیپتھ ہے کہ دے نیو. اسی لیے میں نے آپ کو کہا نا صرف علم آ جانا کافی نہیں ہے، پتا تو ہمیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہاں مگر پھر اس کو مانتے کتنا ہے، پھر اس کے مطابق چلتے کتنا ہے، बैनहुम, तो एक निदा देने वाला, एक मौजिने पुकारने वाला उनके दरमियान पुकारेगा, यानी जन्नत और जहन्नुम वालों के दरमियान होगा, वो पुकारेगा अल्लानतुल्लाही अल ज़ालिमीन, अल्लाह की लानत हो जालिमों पे। अब देखिए जहन्नुम के अंदर ना अजाब सिर्फ आग का नहीं है, इंसल्ट, इस कदर इंसल्ट, इस कदर बेइज्जती। अब ये वो लोग हैं जो दुनिया में बड़े अच्छे भले बन के फिरते थे, अब वहां पे लानते, फिटकारें, जिल्लत, जहां पे जन्नत वाले असलामुन अलैकुम में है, खुश आमदीद, उनके लिए मरहबा है, ना कोई गिल है, ना कोई हसद है, खुशियां ही खुशियां हैं। और देख लें जहन्नम का माहौल कितना तलख है, कितना कड़वा है, कोई कह ही देना लानत है तुझके ऊपर, तेरे ऊपर, तो इंसान का दिल बैठ जाता है और कितना उसको बुरा लगता है, उसका सारा दिन खराब हो जाता है कि आज इसने मुझे ऐसी बात कह दी। तो देखिए ये अजाब में भी है, ऊपर से लानते भी सुन रहे, लानत क्या है, रहमत से दूरी, तो वाकई वो रहमत से दूर है। देखो रहमत तो अल्लाह की जन्नत है, इनके काम क्या होते थे। अल्लदीना यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह, जालिम पे अल्लाह की लानत है। जालिम कौन, कौन जालिम है, वो जो अल्लाह के रास्ते से खुद भी रोकते हैं और दूसरों को भी रोकते हैं। इनका एजेंडा क्या, ना कोई, ना खुद अल्लाह के रास्ते पे चलना, ना लोगों को चलने देना उनके अल्लाह के रास्ते में, या बहुना आइवा जा, उसके अंदर कजियां निकालना, उसके अंदर एतराजात निकालना, उसके अंदर बातें बनाना, उनके अंदर कुछ ऐसे नुक्ते निकाल लेना कि जो है ना, जिससे लोग मुतनफिर हो जाएं इस रास्ते से, दीन के अहकामात को ऐसे ट्विस्ट कर करके पेश करना। देखा तुमने ये, भला ये देखो कैसी बात है, देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तो उन्होंने इतनी शादियां ऐसे कर ली, ये ऐसे हो गया, इस्लाम तो ये कहता है, भला देखो अब ये कैसी बात हुई, तुम कुछ सोच सकते हो कि आज क्यों ये चीजें चल सकती हैं। यानी टेढ़पन उनके अंदर निकालना, ऐसे मैं माजरत के साथ कहती हूँ, ऐसे कई मुसलमान भी हैं। दुख की तो ये बात है, वो तो कहें जो के मानते ही नहीं, वो जो कहते हैं हम मानते हैं और फिर वो टेढ़ निकालते, फिर लोगों को रोकते हैं अल्लाह के रास्ते से, खुद तो करना ही नहीं, खुद तो डूबे हैं लेकिन दूसरों को भी ले डूबते हैं। ये कितनी बड़ी बुरी बात है कि लोगों के ईमानों को खराब कर रहे हैं, गारत कर देते हैं लोगों की आखरत को, वहुम बिल आखरत ही काफिरून, और वो आखरत के तो इनकारी हैं, यानी मरने के बाद जी उठने के पर उनको कोई मानते ही नहीं, हालांकि इंसान अगर अपनी अकल से भी सोचे तो उसकी अकल भी कहती है कि एक दिन होना चाहिए जिस दिन हिसाब किताब, क्या ये ऐसे ही छूट जाए जो सारे आज छूटे फिरते हैं, इतने बड़े बड़े मुजरिम हैं और अपने अपने असर व रसूख की वजह से, अपनी पावर की वजह से कोई इनके ऊपर हाथ नहीं डालता, ये क्या ऐसे ही चलता रहा। इंसान की अकल कहती है नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आखरत के ये मुनकर हैं, क्योंकि आखरत को मानेंगे तो फिर तो अपनी जिंदगी सीधी करनी पड़ेगी। वबैनहुमा हिजाब, अब आ गई है सूरह आराफ, इस आराफ के नाम पे ही है, उन दोनों के दरमियान, बैनहुमा, बैनहुम नहीं, बैनहुमा, उन दोनों के दरमियान, किन दोनों के दरमियान, जन्नत और जहन्नुम के दरमियान हिजाब, एक बैरियर होगा, एक दीवार होगी। और आराफ कहते हैं, आगे आ रहा है आराफ, आलल आराफ, और आराफ कहते हैं बुलंद जगह को, और बुलंद जगह पे लोगों को पहचान लिया जाता है ना, कि वो कोई बुलंद जगह पे खड़ा हो तो आप उसको पहचान लेते हैं, वो फुलां खड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये एक, इन दोनों के दरमियान एक आड़ है, जन्नत और जहन्नम के दरमियान। अब हम इसको, चीजों को पूरी तरह नहीं समझ सकते, वही बात है, वहां जब यहाँ वहां पे जाएंगे तो पता चलेगा इन बातों का, लेकिन बस हमने इस तरह ही मान लेकर आना है। वो कैसी है दीवार, वो कैसी है आड़, या क्या है वो, किस तरह है इनके दरमियान, हम नहीं जानते, हम उसको पूरी तरह समझ नहीं सकते, बस है वो। तो वो हिजाब जो वो दीवार है ना, दोस्तियों को जन्नत से फासले पर रखेगी, जन्नत वाले जहन्नम वालों और जहन्नम वाले जन्नत वालों के साथ नहीं मिल सकते, इनके दरमियान ये एक दीवार हायल कर दी गई है। जिस तरह सूरह हदीद में आता है कि इस एक दीवार होगी जिसमें एक दरवाजा होगा, इसके अंदर रहमत है और उसके बाहर अजाब है। तो कहते हैं कि उस वो ही आराफ है, सूरह हदीद में भी इसका जिक्र है। ठीक है, अब इब्ने अब्बास फरमाते हैं ये ऊंची जगह है, यानी दीवार है, उस दीवार का नाम क्या है? आराफ। उस दीवार को यहाँ पे क्या कहा गया? हिजाब, आड़, बैरियर, दीवार। ठीक है, और उसका नाम आराफ है। समझ आ गई बात कि नहीं? इब्ने अब्बास फरमाते हैं ये ऊंची जगह है जन्नत दोजख के दरमियान, जहां कुछ लोग रोक दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर। वह अलल आराफ रिजाल, और आराफ के ऊपर भी कुछ लोग होंगे। यानी आप देखे ना, एक तरफ जन्नत है, एक तरफ जहन्नम है, बीच में है। यही आपको बता रहा है ना कि इसका मतलब ये बीच वाले लोग हैं ना, ये जन्नती हैं ना ये जहन्नमी हैं। ये भी ऐसे हो सकता है। हाँ, सुदी फरमाते हैं इसका नाम आराफ इसलिए रखा है कि यहाँ के लोग और लोगों को जानते पहचानते होंगे, क्योंकि ऊंची जगह पे होंगे ना, तो यहाँ कौन लोग होंगे? इसमें जो अकवाल है उनमें सारों को, सारे जितने भी मुफसरीन ने लिखे हैं उन सारों को जमा किया जाए तो एक लाइन में वो ये है कि ये वो लोग होंगे जिनके गुनाह और नेकियां बराबर हो जाएंगी। देखिए, ऐसे भी तो हो सकता है ना। अब आप जब आप पलड़ों के बारे में पढ़ते हैं कि मीजान के पलड़े होंगे, कभी भारी होंगे, किसी के हल्के हो जाएंगे, या एक किसी का नेकियां बढ़ जाएंगी, किसी के गुनाह बढ़ जाएंगे, ऐसे भी तो हो सकता है कि किसी के नेकियां और गुनाह एक बराबर हो जाए। जैसे इब्ने मसूद फरमाते हैं कि कयामत के दिन लोगों का हिसाब होगा, एक नेकी भी अगर बुराई से बढ़ गई तो जन्नत में दाखिल हो जाएगा, एक बुराई भी अगर नेकी से बढ़ गई तो जहन्नम में जाएगा। और हम पहले शुरू में पढ़ आए फमन सकुलत मवाजीन हो। ठीक है, अब वो एक जो नेकी या एक जो बुराई ना, राई के दाने के बराबर भी हो सकती है। इतनी सी भी कमी से या इतनी सी भी ज्यादती से मीजान का पलड़ा हल्का या भारी हो जाएगा। समझ आए? लेकिन अब आप सोचें कि सारा कुछ डाल दिया, बिल्कुल बैलेंस इक्वल हो गया, अब ये किधर जाए? अब तो गलत होगा ना इनको जहन्नुम में जाना, वो भी गलत होगा, जन्नत में भी नहीं जा सकते, क्योंकि जाहिर है नेकियां तो बड़ी नहीं, और जहन्नुम में भी नहीं जा सकते इसलिए क्योंकि गुनाह इतने ज्यादा नहीं है कि वो जहन्नुम में चले जाए, और नेकियां इतनी ज्यादा नहीं कि जन्नत में चले जाए। अब गुनाह उनको रोक रहे हैं जन्नत में जाने से, और नेकी उनको रोक रही है जहन्नुम में जाने से, तो अब क्या करेंगे ये, इनका क्या होगा? ये आराफ वाले हैं, ये यहाँ पे ठहरा लिए जाएंगे। यू वेट हेयर, आप यहाँ पे खड़े हो। अल्लाह अकबर। कभी आपने सोचा कि ये जब हम अमल करने लगते हैं तो हम सोचते हैं अच्छा अगर इतने गुनाह कर भी लिए हैं तो मेरी ये नेकियां भी तो हैं, और उसको देख के तसल्ली कर लेते हैं, गुनाहों को छोड़ते नहीं है, साथ नेकी भी कर लेते हैं, साथ गुनाह भी कर लेते हैं, फिर नेकी कर ली, फिर गुनाह कर ली, फिर नेकी, यही सारी जिंदगी चलता रहता है। और व्हाट इफ के दोनों इक्वल हो गए, व्हाट इफ के दोनों बिल्कुल बराबर हो गए, तो अब क्या होगा? वहां पे तो यानी यहाँ पे हमसे एयरपोर्ट पे बैठना मुश्किल हो जाता है, डॉक्टर्स ऑफिस में इंतजार करना मुश्किल हो जाता है, हालांकि क्या है वो एक अपॉइंटमेंट ही होती है, लेकिन यहाँ पे तो एक तरफ जन्नत है और एक तरफ जहन्नम है, और ये इंतजार में है कि अब हमारा क्या बनेगा। तो अब ये यारिफूना कुल्लम बिसीमाहुम, ये हर एक को उनके चेहरों से पहचान लेंगे, उनकी निशानियों से पहचान लेंगे। जाहिर है जन्नत वालों के चेहरे हम पहले पढ़ चुके हैं कि वो रोशन होंगे, चमकदार होंगे। अब ये ऊपर बैठे हुए इनको दोनों तरफ नजर आ रही है, तो अब ये जन्नत की तरफ देखते हैं, वहां के चेहरे वाले ऐसे हशाश बशाश खुश चेहरे उनको देखेंगे और क्या कहेंगे, वना दो, और वो पुकारेंगे। ऐसे लगता है कि जैसे इतनी हसरत भी है ना इस पुकार में, अस्हाबल जन्नती अन सलामुन अलैकुम, आप क्या कहें, वहां से देख रहे हैं उनको, वो अपने मजे कर रहे हैं, उनको कहते हैं सलाम हो तुम पे सलामती हो, पीस कि मतलब कितना जबरदस्त तुम्हें सलामती मिली है कि तुम इस तरह जन्नत की नेमतों में घूमते फिर रहे हो, सलाम करते रहेंगे उनको। ये इसी से पता चलता है वो देख के कैसे, उनके कैसे जज्बात होंगे, इंसान को कोई चीज ना मिली हो ना और किसी और को देखे कि वो इतनी उस वो ही चीज जो मैं चाहती हूँ उसके अंदर है, तो विल ना हो अगर उसके दिल के अंदर, तो फिर इसी किस्म के जज्बात निकलते हैं। लम यदखुलूहा वहम यतमाउन, वो दाखिल तो नहीं हुए लेकिन ललचाए में कि हमें भी इसमें दाखिल कर दिया जाए, इसकी तमा रखते हैं, इसकी उम्मीद रखते हैं, इसकी शदीद तलब रखते हैं। यकीन नहीं है कि पता नहीं जाते हैं नहीं जाते, लेकिन इसकी उम्मीद जरूर है, हो सकता है अल्लाह हमें इसमें दाखिल कर दे। अब वो क्योंकि दिल तो यही चाह रहा है ना उनका, ख्वाहिश तो उनकी यही है ना। वइदा सुरिफत अबसारुहुम, और जब फेरी जाएंगी उनकी निगाह, यानी खुद नहीं फेर रहे, सुरिफत है, मजहूल है, वो खुद फेरना थोड़ी चाहते हैं, वो खुद देखना नहीं चाहते दूसरी तरफ, मगर उनको दिखवाया जाएगा कि उधर भी देखो ना जरा, उनकी निगाहें फेरी जाएंगी किस तरफ, तिलका अस्हाब नार, तरफ अस्हाब नार के। और यहाँ पे लिका का लफ्ज आया, मुलाकात करना, एक होता है ना उन इला अस्हाब नार भी तो हो सकता था, वाइजा सूरी फतह सारूम इला अस्हाब नार की तरफ, तो इला का मतलब तरफ ही होता है, लेकिन अब मैंने इसका भी आपको तर्जमा तरफ ही लिखवाया, तो क्या फर्क है असल में, उर्दू में उस तरह से हम उसकी डेप्थ में नहीं जा सकते, वो कुछ और तर्जुमा नहीं लिखवाया जा सकता, असल तर्जुमा ये कि मुलाकात करेंगी उनकी निगाहें अस्हाब नार से। तो मुलाकात करना क्या मतलब, डीपली उनको देखना, मुलाकात यही होती है ना, आप दूसरे से मिल जाते हैं, तो यानी उनको अच्छी तरह मतलब उनकी जो उनकी सिचुएशन है उसको देख लेंगे, ऐसे नहीं कि सरसरी सी, क्योंकि आप कोई ऐसे बुरा सा सीन देख ले तो इंसान ऐसे ही आंखें बंद सा कर लेता है, आंखें मीट लेता है ना, और चाहता है कि मैं दूसरी तरफ देख लूं, चुराता है नजरों को, तो इस तरह से नहीं कर सकेंगे, पूरा उनको उनको पूरा उनके सामने व्यू होगा उनका, पूरी तरह उनको देखेंगे, उनको दिखवाया जाएगा, तो फौरन क्या कहेंगे, कालू रब्बना ला तजअलना माल कौम ज़ालिमीन, ए हमारे रब हमें ना इन जालिमों के साथ ना करना। वनादा अस्हाबुल आराफ रिजाल यारिफूनहुम बिसीमाहुम, और पुकारेंगे आराफ वाले वो कुछ लोगों को, अब वो देख रहे हैं वहां पे जहन्नुम में कुछ लोग पड़े हुए हैं और ऐसे उनके क्या है उनको हाल बुरे हुए पड़े हैं, तो उनको देख रहे हैं और उनके चेहरों से उनको पहचान रहे हैं। अब चेहरों से कैसे पहचानते होंगे, इसलिए कि जहन्नुम वालों के तो चेहरे ही बता रहे होंगे कि जो उनकी हालत होगी, और जैसे वो चेहरे स्याह होंगे, और जैसे उन चेहरों के ऊपर वहशत होगी, और जैसे उन चेहरों के हालात होंगे, वो ही बता रहे होंगे कि ये जहन्नुमी है। अच्छा ये थोड़ी सी आपको इसकी तफसीर में से भी बता दूं कि जब जन्नत वालों को देखेंगे तो उनको सलाम करेंगे, और जब जहन्नुम वालों को देखेंगे तो अल्लाह से पनाह तलब करेंगे, नेक लोगों को नूर मिलेगा जो उनके आगे और उनके दाहिने तरफ मौजूद रहेगा, हर इंसान को वो मर्द हो चाहे औरत हो एक नूर मिलेगा, लेकिन पुरसिरात पे मुनाफिकों का नूर छीन लिया जाएगा, उस वक्त सच्चे मोमिन अल्लाह ताला से नूर के बाकी रहने की दुआएं करेंगे, आराफ वालों का नूर छीना नहीं जाएगा, वो उनके आगे आगे मौजूद होगा, और इसी वजह से उनको जन्नत में जाने की तमा होगी, जन्नत में जाने की तमा होगी, उम्मीद होगी। तो इब्ने अब्बास फरमाते हैं लोगों एक नेकी 10 गुना करके लिखी जाती है और एक बुराई उतनी लिखी जाती है जितनी होती है, अफसोस है उन पर जिनकी इकाई यानी जिसको कहते हैं इंडिविजुअल दहाइयों पे डबल डिजिट्स पे गालिब आ जाए, वो तो एक लिखी जा रही है वो 10 लिखी जा रही है, एक यूनिट है और वो डबल यूनिट्स है, और वो फिर भी एक जीत गई। तो इसी तरह इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि आराफ एक दीवार है जो जन्नत और जहन्नम के दरमियान है, असहाबे आराफ वही मौजूद होंगे, जब इन्हें आफियत देने का अल्लाह इरादा करेगा तब उनको हुक्म मिलेगा कि इनको नहरे हयात की तरफ ले जाओ, जिसके दोनों किनारों पर सोने के खेमे होंगे, जो मोतियों से जड़े हुए होंगे, उसकी मट्टी जो होगी मुश्क खालिस होगी, उसमें गोता लगाते हैं और उनकी रंगतें निखर जाएंगी, और उनकी गर्दनों पर एक सफेद चमकीला निशान हो जाएगा जिससे वो पहचान लिए जाएंगे, ये अल्लाह के सामने लाए जाएंगे, अल्लाह ताला फरमाएगा जो चाहो मांगो ये मांगेंगे, यहाँ तक इनकी तमाम तमन्नाएं अल्लाह ताला पूरी कर देगा, फिर फरमाएगा इन जैसी 70 गुना और नेमतें भी मैंने तुमको दी, फिर ये जन्नत में जाएंगे और ये अलामत उनकी मौजूद रहेगी कि ये आराफ वाले हैं, यानी उनकी निशानी रहेगी, और जन्नत में इनका नाम मसाकीन अहलुल जन्ना होगा, जन्नत के अहल के मसाकीन है ये। और ये अब देखें इंतजार कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, ये एंड में तो इनके साथ ये होगा कि तमा रखते थे, उम्मीद रखते थे अल्लाह ताला इनकी उम्मीद को पूरा कर देगा, लेकिन आप देख लेंगे इनकी निशानी मौजूद रहेगी। अब हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आरा वालों के बारे में पूछा गया तो फरमाया उनका फैसला सबसे आखिर में होगा, यानी जब अल्लाह ताला सारे बंदों का फैसला कर चुकेगा तो उनसे फरमाएगा कि तुम लोगों को तुम्हारी नेकियों ने जहन्नुम में जाने से महफूज रखा, लेकिन तुम जन्नत में जाने के हकदार साबित नहीं हुए। अब मैं तुमको अपनी तरफ से आजाद करता हूं कि अब तुम जाओ जन्नत में रहो, जहां चाहो खाओ पियो। ठीक है, तो ये इसका मतलब है कि जब इतना उनका इंतजार होगा, कब 50,000 साल है कयामत का दिन, कब ये दिन खत्म होगा, सब के फैसले होंगे, सब जाएंगे अपनी अपनी जगहों पे, तब जाके इनके इनकी तरफ तवज्जो होगी। ऐसे ही समझ लें कि जैसे अगर पासिंग मार्क्स 50 हैं तो किसी के 49.5 आ गए। अब आधा नंबर का सिर्फ सवाल है, ये पास हो सकता है, फेल में भी नहीं कहा जा सकता इसको, पास में भी नहीं कहा जा सकता इसको। अब उसको वैसे मैं एक मिसाल के तौर पे बता रही हूं, तो उसको आधा नंबर दे के पास ही कर दिया गया। चलो अब वो पुकारेंगे, अब ये देख रहे हैं कि जहन्नम के अंदर इस तरह लोग पड़े हुए हैं, उनको पहचान भी रहे हैं, मैंने आपको बताया कि अलामतें उनकी चेहरे की स्याही होगी, तो ये पहचान लेंगे। और फिर वैसे भी कई लोग बड़े बड़े फिरौन, बड़े बड़े जो मुतकब्बिरीन उनके वक्त के थे, वो उनको भी पहचान लेंगे। कालू मा अगना अनकुम जमअकुम, वो कहेंगे तुम्हें तो कोई काम ना आया तुम्हारा जत्था। और ये सवाल भी हो सकता है, ये खबर भी हो सकती है कि नहीं काम आया तुमको कोई तुम्हारा इतना बड़ा जत्था जो था। वमा कुंतुम तस्तकबिरून, जो तुम इतने बड़े बन बन के फिरते थे, यानी तुम्हारे जो जत्थे, जो तुम्हारे ग्रुप था, जो तुम्हारा मैन पावर थी, जो तुम्हारे साथी थे, जो तुम्हारे साथ साथ आगे पीछे फिरते थे, जत्थे समझते हैं ना जमात पूरी। अब ये कौन होते हैं जत्थे दुनिया के अंदर, अगर आप इस आयत की रोशनी में देखें तो आज कौन कौन से ग्रोह बंदियां बनी हुई हैं, ग्रुप्स कौन कौन से बने हुए हैं, मजहबी तौर पे भी ग्रोह बंदियां हैं, ये इस फिरके का वो उस फिरके का, नस्ली तौर पे भी ग्रोह बंदियां, बरादरी मेरी बरादरी वो उसकी बरादरी, बरादरी इतनी बड़ी चीज है कि बस वो ही सब कुछ समझी जाती है, दूसरे तो सारे हकीर है, हमारी बरादरी सबसे ऊंची। इलाकों की बेसिस के ऊपर, वो अरबी वो पाकिस्तानी वो इंडियन वो फला, सियासी तौर पे भी ग्रुप बंदियां ग्रुप्स हैं ना, सियासी पार्टियों वाले देखें किस तरह वो भी एक जत्था है, और उनको ऐसे लगता है कि जो दूसरा जो है वो ऐसे उनकी बातें सुन के लगता है कि ये तो इंसान ही नहीं है, इतना दूसरे को हकीर समझते हैं। और हम आज बहुत बड़े हैं क्योंकि हमारी पार्टी बहुत बड़ी, हमारा ग्रुप बहुत बड़ा है, तो ये सारे खुद को बहुत बड़ा समझते थे, और बड़ा समझने की वजह की थी कि इनके साथ जत्थे थे बड़े, यानी किसी भी ग्रुप में चाहे वो कोई सियासी है, चाहे वो कोई बरादरी है, चाहे वो कोई मसलक है, उसमें शामिल होके समझते हैं कि हम भी बहुत बड़ी चीज बन गए। और वो यही समझते कि हक बस वही है जो मेरी पार्टी या मेरे मसलक या मेरी बरादरी का है, जिस ग्रुप से भी वो अपने आप का ताल्लुक जोड़ता है। अब चाहे वो कोई स्याह करे, सफेद करे, जुल्म करे, जबर करे, कुछ भी करे, कितना भी गलत कर ले, मगर वो उसकी हिमायत करता रहता है। क्यों? इसलिए कि ये हमारा तो है ना, ये हमारे अपने हैं। अगर ये इस बातें सिर्फ पहचान के लिए हों तब तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर ये क्राइटेरिया बन जाए हक और इंसाफ का, तो फिर बहुत बड़ा हर्ज है। अगर आप सिर्फ इस वजह से कि कोई हमारी चूंकि बरादरी का है, अब चाहे वो कितना भी बुरा है, लेकिन वो फिर भी हम उसी का साथ देंगे, तो ये है वो जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो तो फिर कोई काम नहीं आएंगे ना, तो फिर ऐसी बरादरी और ऐसे ग्रुप कहाँ चले गए दुनिया में, तो समझ रहे थे कि ये इतने मेरे फैंस हैं, या मेरे इतने गार्ड्स हैं, या मेरी ये आगे पीछे नौकरों की चाकरों की ये फौज है, या मेरी बरादरी इतनी बड़ी है, कुछ भी हुआ तो ये मेरा साथ देंगे, मेरी पार्टी इतनी बड़ी है, दुनिया में जत्थे इंसान को ना बहुत वो देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं कि हम बहुत बड़ी चीज हैं। और इसी वजह से इंसान जुल्म पे उतर आता है, क्योंकि उसको बड़ा मान होता है कि मेरे साथ इतने लोग हैं जी। आज तो ये फैंस वाली, ये फॉलोइंग वाली चीजें बहुत चली हुई है ना, कि इंसान उसके ऊपर भी बहुत बड़ा अपने आप को समझता है, मेरे साथ इतनी बड़ी तादाद है, मुतमईन होता है कि मेरा क्या कुछ बिगड़ सकता है। तो वहां पे पता चलेगा ना कोई फैन रहे, ना कोई फॉलोइंग रहे, ना कोई बरादरियां है, ना कोई भी नहीं। ये जो लंबी चौड़ी लिस्टें आज हम देते हैं ना, मेरे साथ इतने, मैं ऐसे, आज इतनी बड़ी चीज अपने आप को बनाया हुआ है कि इंसान कहता है कि मैं मेरे से ज्यादा क्या किसी का हो सकता है। हम तो बहुत बड़े जत्थे वाले लोग हैं, और बड़ा फखर इस पे होता है। देख लें फिर वो क्या हाल हुआ। और इस तरह की ग्रोह बंदियां उम्मत में करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो हम में से नहीं है जो ग्रोह बंदी की तरफ बुलाता है, ग्रोह बंदी करता है। यानी ये अच्छा नहीं है कि उम्मत को डिवाइड करना। तो वो सारी चीजें जिनके बलबूते पे तुम बड़े अपने आप को समझते थे, वो तो तुम्हारे कुछ भी काम ना आई। यानी अब कहाँ है तुम्हारे वो जत्थे, कहाँ है तुम्हारी बरादरी आके बचाए ना तुम्हें। अब एक तरह का टॉन्ट है उनके ऊपर। आहा उलाई, क्या यही है अल्लदीन अक्सम तुम ला यनालुहुमुल्लाहु बिरहमा, क्या यही वो लोग हैं जिनके बारे में तुम कस्में खाते थे, इनको, इनके ऊपर तो कोई अल्लाह की रहमत नहीं होगी। और हमें जो आज मिला हुआ ना, तो वहां पे भी हमें मिल जाएगा। मसलन है किसी की मेड है, किसी का ड्राइवर है, वो फकीर गरीब जो मस्कीन, जो तन पे सही से कोई ढंग के कपड़े नहीं है, उनको सोचते हैं इनको वहां पे क्या मिलना है, इनको क्या मिलेगा, ये नहीं, इनको नहीं वहां पे कुछ मिलना, ये यहाँ पे भी इसी तरह है, वहां पे भी इसी तरह रुलेंगे। तो बड़ा तकब्बुर था इनको, कस्में खा खा के कहते थे। और उस वक्त के देख ले मुशरिकीन, तो हजरत बिलाल, हजरत सुहेब के बारे में ये कहते थे कि ये क्या है। दुनिया में जो इंसान को अपनी दौलत का या अपने जत्थों का बड़ा ही मान होता है ना, तो वो फतवे बड़े देता है, बड़ा लोगों का तफलाना तो है ना, ये सिर्फ तो जहन्नमी है, ये तो ऐसे ही है। आज क्या कोई सोच सकता है कि मेरी जो घर में सफाई करने वाली है वो जन्नत में ऊंचे दर्जों पे मलका बन के बैठी, और मैं किसी निचले दर्जे में हूं, कोई सोच सकता है। लेकिन कयामत का दिन है, खाफिजतुर राफिया, बड़े बड़े ऊंचों को नीचा कर देगा, नीचों को ऊंचा कर देगा। तो जिनके तुम फतवे देते थे ना जहन्नुम में जाने के, और इनको कोई रहमत नहीं मिलनी, और जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये भी तुमसे आगे निकल सकते हैं, इतनी हसरत होगी उस दिन जब इनको ये कहा जाएगा जो जहन्नुम में पड़े होंगे कि देख लो वो उदखुलुल जन्नत ला खौफुन अलैकुम वला अंतुम तहज़नून, उनके बारे में ऐलान होगा दाखिल हो जाओ जन्नत में, तुम्हें कोई खौफ नहीं, तुम्हें कोई गम नहीं है। ये आराफ वाले भी हो सकते, जिनको दुनिया में ताने मिलते थे, बातें सुननी पड़ती थी, या और भी गरीब और रबा जो ऐसे मसाकीन थे जिनको कोई कुछ समझा नहीं जाता था, उनको कहा जाएगा अब तुम जन्नत में जाओ। लेकिन इनको दिखा के उनको ऐसे कहा जाएगा ताकि इनको हसरत हो, ताकि इनको अफसोस हो कि हम क्या सोचते थे और ये क्या निकला। तो कोई इंसान मान ना करे यहाँ पे कि मैं बहुत बड़े किसी बड़ी फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ, बड़े खानदान से, जो अब मैं अकड़ अकड़ के चलूँ, हटो बच्चों के शोर मेरे सामने हो, जी फलानी आ गई है, सारे खड़े हो जाएं, वो ये जत्थे और ये कुछ नहीं है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। और फिर बड़े, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े अफिसर और बड़े बड़े जो मालदार लोग होते हैं कैसे अकड़ के चलते हुए अंदर आते हैं, तो क्या इनकी हैसियत है। कोई वो जो पसमानदा मिस्कीन निग्लेक्टेड लोग माशरे के, वो देखो उनको कहा जा रहा है तुम जाओ, और ये जो बड़े समझे जाते थे ना उनको दिखाया भी जा रहा है, उनको बताया भी जा रहा है। जो इनके साथ बैठना तो दूर की बात, इनके साथ बात भी करना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो तो वही जो बड़े जत्थों वाले होते हैं वो वही बातचीत करते हैं, यहाँ पे उनको पता होता है हमें यहाँ पे कोई फायदा मिलना है, ऐसे लोगों से थोड़ी करते हैं। अनादा असहाब उन्नारी असहाब अल्जन्नती, अब उन आग वाले जो होंगे आग में पड़े हैं, अब वो जन्नत वालों से बात कर रहे हैं। पहले किसने की थी? जन्नत वाले इनसे बात कर रहे थे, अब वो उनको एक्सेस दी गई, वो पुकार रहे हैं। अब इनकी पुकार के अंदर आप इनकी जो ये डायलॉग है ना, इसमें ही आप उनकी बेबसी बेचैनी उनका कर्ब महसूस कर सकते हैं। क्या कहते हैं, अन अफीदू अलैना मिनल मा, हमारे ऊपर भी डाल दो कुछ पानी में से, सारा नहीं कह रहे थोड़ा सा डाल दो, मिन तब इजी अभी होता है बाज, यानी उसमें से थोड़ा, उसमें से कोई चीज, यानी तुम्हारे पास इतना कुछ है तुम हमें भी थोड़ा सा हमारे पर पानी ही उंडेल दो। क्यों? इसलिए कि ये जल रहे हैं, इसलिए कि ये कोयला हो चुके हैं जल जल के, इसलिए कि प्यासे हैं। और जो वहां पानी है वो क्या है? वो तो वो पानी है जो गसलीन है, वो पानी है जो गसाक है, जिसका एक डोल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया में डाल दिया जाए ना, वो इतना जहरीला बदबूदार मशरूब है कि सारी दुनिया की मखलूक को बदबूदार कर दे। जहां पे पिघले हुए तांबे को पानी के तौर पे दिया जाता है इनको, जहां पे वो पानी है जो कि ऐसा नहीं कि पानी नहीं है, पानी के पास भी ले जाया जाता है, लेकिन वो पानी है जिसका बर्तन उनके चेहरों के पास आता है तो उसका टेम्परेचर ऐसा है कि वो उनकी चेहरों की खाल को मेल्ट कर देता है और वो अंदर गिर जाती है उस बोल। ये वो लोग हैं आज पुकार रहे हैं, थोड़ा सा पानी हम पे डाल दो, स्प्रिंकल कर दो, थोड़ा ही दे दो। अस्तग़फिरुल्लाह अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार। कल तक जिनको तकब्बुर था लोगों को हकीर समझते थे, आज देखो रहम मांग रहे हैं उनसे। और पानी वो चीज है दुनिया में जो गरीब से गरीब को भी मुयस्सर है, गरीब से गरीब वो भी पानी पीता है। यानी दुनिया में कोई इतनी बड़ी चीज नहीं समझी जाती, कोई वो बहुत बड़े बड़े महंगे मशरूब नहीं मांग रहे कि जन्नत के कोई आला शराब हमें भी पेश कर दो, कोई जन्नत की शराब में से हमें भी चखा दो। नहीं, बेसिक नेसेसिटी है पानी समझा जाता, बेसिक थोड़ा सा पानी तो दे दो। ये देखें कितना कर्ब है इसमें, इस मंजर में, कि वो किन हालात में होंगे आपको इस बात से अंदाजा हो रहा होगा कि उनकी हालत क्या होगी कि जो ये मांग रहे हैं। ओ मिम्मा रज़ाकुमुल्लाह, या जो रिस्क दिया अल्लाह ने तुम्हें उसमें से ही कुछ दे दो। यानी इसका मतलब भूख भी है प्यास भी है, दोनों अजाब है। तो वो बता रहे हैं कि हम बहुत तकलीफ में हैं, वहां पे कोई डॉक्टर नहीं है, वहां पे कोई दवा नहीं है, वहां का खाना कोई खाना नहीं है, जख्मों में खाने को जो दिया जाएगा, जो खाना नहीं कहला सकता। तो जले हुए इंसान, जली हुई जिल्दें अब इन लोगों को पुकार रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने सुख ही सुख देखा था, जो जरा सी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर रहे, इतने बड़े मुतकब्बिर थे, इतने बड़े जत्थों वाले थे, एक एक वक्त में कई कई खाने खाते थे, जो बासी खाने को खाने का तस्वुर नहीं कर सकते थे। एक कितने अब काबिले रहम है कि अब कैसे कैसे इनकी जिंदगी हो गई, अब जहन्नुम का लहू पी रहे हैं, जहन्नुम की पीप इनको दी जा रही है और वो भी पी रहे हैं। तो अब उनसे मांगते हैं, तुम तो इतने ऐश में हो, तुम तो इतनी नेमतों में हो, मिम्मा रजा का कुमुल्ला, तुम्हें तो अल्लाह ने इतना रिस्क दिया हुआ, थोड़ा तो कुछ हमें दे दो। अस्तगफिरुल्ला 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 अस्तगफिरुल्ला, या अल्लाह इस अंजाम से हर एक को महफूज रखना। या अल्लाह क्या हम दुनिया के मसाइल को मसाइल समझते हैं? क्या हम दुनिया की जरा सी भूख प्यास को कुछ समझते हैं? क्या हम जरा से खाना हमारी मर्जी का ना हो तो हम कितना मुंह बनाते हैं, कितनी इस चीज के ऊपर हम गुस्सा करते हैं? कालू इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन, वो कहेंगे नहीं हम नहीं ये तुम्हें दे सकते, इसलिए कि ये अल्लाह ने हराम किया काफिरों पे। वो ये नहीं कहेंगे अच्छा हम तुम्हें तरस खा के दे देते हैं, नहीं, इसलिए क्यों ये कहेंगे? क्योंकि जिंदगी भर अल्लाह ताला ने जिस काम से भी इनको रोका था वो उस काम से बच के रहे, उन्होंने कभी वो काम नहीं किया। अब भी वो कहते हैं कि नहीं, जब अल्लाह ने हराम कर दिया तो हम नहीं दे सकते, हालांकि वो उनके पास इतनी आसाइशें हैं, इतनी आसाइशें हैं कि वो जितने एक जन्नती पूरे जन्नतियों की भी अगर दावत कर दे तो उसके ने जो उसको नेमते मिली हुई उनमें कोई कमी नहीं आएगी। एक फल थोड़ेगा, आपने पहले भी सुना हुआ है, वहां पे फौरन दूसरा फल लग जाएगा, उनको कोई कमी थोड़ी आनी है। और ये तो वो लोग हैं जो जन्नती लोग हैं, जो इसका मतलब दुनिया में सदका और खैरात भी करते थे, दुनिया में लोगों को देते थे, लेकिन आज देखो वो भी कहते नहीं, आज ये चीजें तुम्हें नहीं मिल सकती, आज एक निवाला भी नहीं हम तुम्हारी तरफ फेंक सकते, आज जरा सा पानी जैसी चीज भी हम तुम्हें नहीं देख सकते। आप आज अगर दुनिया में कोई चीज खा भी रहे हो ना, कोई खड़ा देख रहा हो तो तरस आ जाता है, अच्छा चलो थोड़े से लुक में इसको भी दे दो, चलो थोड़ा सा इसको भी दे दो, अब ये देख रहा है तो वो मांग रहे हैं, वो फरियाद कर रहे हैं, वो रो रहे हैं, और उनकी हालत क्या है कि बदतरीन हालत में है, लेकिन उनको क्या जवाब मिलता है? लेकिन उनको ये जवाब क्यों मिला? इसलिए अल्लदीन तखजु दीनहुम लहवा वलाइबा, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने दीन को लह और लाइब बना लिया था। ये यानी हम समझते हैं सिर्फ गैर मुस्लिमों को काफिर कहा जाता है, यहां पे उन लोगों को काफिर कहा जा रहा है, अल्लदीन तखजु दीनहुम लहवा वलाइबा, जो अपने दीन को खेल तमाशा बनाए हुए। लहव और लाइब में क्या फर्क है? लहव है कि कोई बहुत चीप चीज ले ली और कीमती चीज छोड़ दी, तो उन्होंने आखरत को छोड़ के दुनिया ले ली, उन्होंने अल्लाह की रजा को छोड़ के दुनिया का हकीर सामान ले लिया, उन्होंने अल्लाह की रजा को छोड़ के अपनी मर्जियां पूरी करा ली, सब हकीर था ना, ये सब लहव है। और लाभ क्या है? अमल तो किया मगर उसका कोई फायदा ना हो, ना कोई नुकसान हो, यानी लफ बात में वक्त लगाया, वेस्टिंग टाइम, उसने उनको कहाँ तक पहुंचा दी, यानी वो दीन को सीरियस ही नहीं लेते थे, दीन को कुछ समझते ही नहीं थे, दीन को शुगल मेला समझते थे। आप देखिए आज बहुत सारे लोगों का ये हाल है कि दीन उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखता, बस साइड की एक चीज है, चलो कभी किसी ने किसी दर्स करा लिया तो वहां पे जाके मुश्किल से बैठ गए, वो भी बस पहलू बदलते रहे कि कब खत्म होगा और जान छूटे क्या ये दर्स शुरू करा देते, हम किसी मेहंदी पे आए हैं, किसी ढोलकी पे आए हैं, हमने नाचना है गाना है, ये बस हर एक चीज से पहले बस दर्श इनका शुरू हो जाता है, अब वो मुसीबत में है, अब वो ऐसा कोई अटेंड कर लिया, कभी कोई भूले से कोई बात किसी ने भेज दी तो वो देख ली, अपना दीन उनके लिए कोई भी ऐसी अहमियत नहीं रखता, उसको कोई कोई खास उनकी जिंदगी में इसका वो नहीं है, बस ठीक है अगर मुसलमान भी हैं तो ठीक है बस एक नाम के, दीन को कोई बड़ी बात नहीं बनाते हैं, होगा दीन होगा तुम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं बस। लहव वही सारी चीजें होती हैं जो इंसान को रब से गाफिल करते हैं, और लाभ खेल आज खेल नहीं बना हुआ दीन, खेल तमाशा, कोई सीरियस नहीं लेता इसको, बस ये सब कुछ कुछ भी कर लो जो मर्जी कर लो, हमने तो आगे जाके जन्नत में ही जाना है, फिर तफरी भी लिया बस को, लाभ तफरी भी होता है ना, एंटरटेनमेंट, आप देख ले दीन को एंटरटेनमेंट बना दिया, दीन में जब तक एंटरटेनमेंट ना हो तो मजा ही नहीं आता, कोई हंसाने वाला हो, कोई अंदर जोक्स भी सुनाए, कोई बड़ा खाना पीना भी हो, कोई अल्ला गुल्ला भी हो, तो फिर हम कोई बात सुनेंगे, या दीन को फारिग वक्त का मशगला समझा हुआ है जी, ये दीन पढ़ने वाले कौन है, ये वो है ना जिन जिनके पास कोई और काम नहीं है, तो चलो अब ये अब क्लासे लेने बैठ गए, क्या समझा, फारिग वक्त का मशगला, ये दीन को ऐसे समझते थे, ये दीन को ये समझते थे कि बस जिंदगी में और सारे काम इंपॉर्टेंट है, इसके लिए फुर्सत तब निकलेगी जब मेरे सारे काम हो जाएं, अब वो सारे काम कभी होने ही नहीं, वगर्रतहुमुल हयातु दुनिया, और उनको दुनिया की जिंदगी ने धोखे में डाल दिया था, एक तो दीन को गेम समझते थे, दूसरा धोखा उनको किसने दिया, दुनिया की जिंदगी, यानी यहाँ के घर, गाड़ियां, बच्चे, यहाँ के करियर्स, यहाँ की जॉब, यहीं की बिजनेसेस, ये सब चीजें उनकी जिंदगी का महवर थी, मकसद हयात थी। ठीक है, इनके लिए सब कोशिश भी करते हैं, सबको ख्वाहिश भी होती है मेरा अच्छा घर हो, मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, मेरे पास ये सहूलत हो, या ये एक अलग बात है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बच्चों को खिलाना भी है, पिलाना भी है, इनके लिए माँ ने एक उनके लिए वक्त निकालना है, इनकी तरबियत भी करनी है, लेकिन जब ये चीजें हैं जो इंसान को अल्लाह ताला की फरमाबरदारी से हटा दे, ये चीजें इस कदर उसके लिए बड़ी हो जाए कि वो इनके अंदर इतना इतना मशहूल हो जाए कि इसको आखरत ही भूल जाए, जब ये चीजें हर चीज नजर आने लगे, यही सब कुछ है, तब गड़बड़ आती है। ये नहीं आपको कहा जा रहा है इनकी प्लानिंग ना करो, ये नहीं कहा जा रहा है इनकी कभी कोशिश ही ना करो, बल्कि कहा ये जा रहा है हमें कि इनके लिए जिंदा नहीं रहना ये आपकी जिंदगी का मकसद नहीं है, जरूरत है, जरूरत को जरूरत की हद तक ही रखें। ये भी याद रखें कि ये भी हम जब तक इस दुनिया में हैं तब तक के लिए हमारे लिए जिंदगी गुजारने का सामान है, हमने एक दिन इनको छोड़ के चले जाना, इनमें खो नहीं जाना। और धोखा यही लगता है इंसान को जब वो जिंदगी का सेंटर इनको बना लेता है, इनके गिर्दी जिंदगी घूमती है, अब जहां से ये हासिल हो जाए वहीं पे झुक जाएंगे, जहां से इनका नुकसान होता है वहीं पे वो अपने आप को बचाने के लिए हर अल्लाह के हुक्म को तोड़ देंगे। तो इसलिए बताया गया कि इन्होंने दुनिया की जिंदगी से धोखा खा लिया, इसी को सब कुछ समझ लिया, इसी में पड़े रहे, इसी में लगे रहे, मरने के बाद के लिए सामान ही जमा नहीं किया। फल यौम ननसा हम कमा नसूल यौमी हादा, तो हम भी इनको इस तरह बुला देंगे जैसे ये आज के दिन की मुलाकात को भूल गए थे, उन्होंने भी तो अल्लाह ताला के दिन साथ मुलाकात को भुला दिया था। सही हदीस में आता है कयामत के दिन अल्लाह ताला बंदे से फरमाएगा, क्या मैंने तुझे बीवी बच्चे नहीं दिए थे, क्या इज्जत व आबरू नहीं दी थी, क्या घोड़े और ऊंट तेरे मुती नहीं किए थे, क्या तुझे किस्म किस्म की राहतों में आजाद नहीं रखा था। बंदा जवाब देगा, हाँ या अल्लाह तूने ये सारा कुछ मुझे दिया हुआ था। अल्लाह ताला फरमाएगा, फिर क्या तू मेरी मुलाकात पर ईमान रखता था। वो जवाब देगा, नहीं। अल्लाह ताला फरमाएगा, फिर बस आज तुझे भी ऐसे मैं भूल जाऊंगा जैसे तू मुझे भूल गया था। यानी ये चीजें हैं जो इंसान को भुला देती हैं उसकी आखिरत, जब बीवी बच्चे हैं, उनके काम, उनकी चीजें, फिर इज्जत व आबरू, मतलब है कि इंसान के बड़े लोग इज्जत करते हैं, बड़े आगे पीछे फिरते हैं, उसके बड़े फैंस हैं, या उसके पास कोई ओहदा ऐसा है जिसकी वजह से उसकी बड़ी इज्जत समझी जाती है, या घोड़े और ऊंट, यानी उसके पास बड़ी सवारियां, उमदा से उमदा गाड़ियां हैं, और फिर इंसान सोचते हैं ना, और राहतों की सामान और आसाइशों के सामान अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या मैंने तुझे नहीं दिए थे। जब ये चीजें होती है ना, बहुत जल्दी इंसान सोचने लगता है कि मुझे तो अब अल्लाह की जरूरत ही नहीं, मुझे अब दीन की क्या जरूरत है, मैं तो अच्छा भला रह रहा हूँ, दीन की तो उनको जरूरत हो जिनके पास कोई मुसीबत हो, मुझे क्या है। तो जब उसको ये सब कुछ मिलता है तो वो अपने आप को आजाद समझता है, फिर उसको भूल ही जाता है कि कभी जाना भी है मुझे वापस, वो भूल जाता है। भूलने का मतलब ये नहीं कि उसको पता ही नहीं था, आप समझ रहे हैं ना, इग्नोर करता है, तो उसको कयामत के दिन उसको भी इग्नोर किया जाएगा। वैसे भूल एक ऐब है समझा जाता है ना, कि भूल, किसी को भूल की बीमारी है, भूल का मसला है, तो यहाँ पे जब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हम भुला देंगे तुमको, तो ये मतलब नहीं है कि भूल अल्लाह ताला के लिए कोई भूल का नहीं है चीज, उसके लिए उसको हर चीज याद है, मगर यहाँ पे भूल का मतलब है इग्नोर कर देगा। तुमने भी इग्नोर किया था ना, तुम्हें पता था कि कयामत का दिन, लेकिन तुमने भुला दिया। आज हमें किसको नहीं पता कि कयामत है, किस मुसलमान को नहीं पता, मुसलमान मुसलमान कहला ही नहीं सकता जब तक उसका ईमान ना हो रोजे आखरत पे। लेकिन फिर आप देखते हैं हमारी जिंदगियों में को पता चलता है कि इन ये कयामत पे ईमान रखने वाले हैं, बल्कि बाज दफा ऐसी खबरें पता चलती हैं कि हैरत होती है कि क्या वाकई इनका ईमान है कि कयामत का दिन है, हमें अल्लाह से मुलाकात करनी है, ऐसा हो नहीं सकता कि इसका ये ईमान हो जो ऐसा ऐसा बड़ा जुर्म कर सकता है, जो इस हद तक गिर सकता है। हो नहीं सकता कि इसका ईमान, क्योंकि अगर इसका ईमान होता कैसे हो सकता था कि ये ऐसा काम करता। तो आज इंसानियत भूली हुई है और दीन को क्या समझा था, खेल तमाशा। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम तो बस अभी मसले मसाइल बहुत हैं, बच्चे छोटे हैं, अभी घर की बड़ी जिम्मेदारियां, जब इनसे फारिग होंगे तो फिर दीन को भी हम टाइम दे देंगे। भाई अब आप बताएं कि इन्होंने दीन को कितना सीरियस लिया, इसका मतलब हर चीज सीरियस है, घर भी सीरियस चीज है, बच्चे भी सीरियस चीज है। बहुत अच्छी बात है, आप करें उनका, जॉब भी सीरियस मैटर है, बिजनेस भी सीरियस चीज है, और भी पार्टी शार्टी करना, फ्रेंड से मिलना, वो भी तो सीरियस मामला ही है ना। और वैसे भी एंटरटेनमेंट वगैरह, फेसबुक चेक करना, इंस्टाग्राम, पता नहीं आज तो टिकटॉक और पता नहीं क्या क्या खुराफात आ गई, वो भी बड़ी इधर भी सीरियस चीज है। एक नहीं है सीरियस तो दीन ही सीरियस नहीं है, उसको आखिर में डाला हुआ कि लिस्ट में भी कहीं नीचे होगा, कि जब सारे कामों से फारिग कर हो जाते हैं तो फिर कहते हैं अब रिलैक्स करने का भी तो टाइम है, रिलैक्स भी तो होना चाहिए इंसान को, चलो अब कहीं वेकेशन पे चलते हैं। वेकेशन पे चले गए, वापस आके फिर वो कामों में लग गए, तो इसका इसकी बारी आएगी कब, ये बताए कब आएगी बारी। अभी छोटे हैं तो फिर बड़े होंगे तो फिर बड़ी जिम्मेदारियां उनकी हो जाएंगी, फिर वो बड़े होंगे फिर उनके बच्चों की जिम्मेदारी हो जाएगी, तो तब तो हम कब्र में पहुंच जाएंगे, हमारी ये जिम्मेदारियां तो खत्म नहीं होंगी। जो ये इंतजार करता रहे कि हाँ टाइम दूंगी दीन को, लेकिन उस वक्त जब ये मेरे सारे मसले खत्म हो जाएं, जब मेरे ये सारे काम खत्म हो जाएं, तो वो नहीं खत्म हो सकते। इससे ही आपको पता चलता होगा कि हमने क्या अहमियत दी है इस दीन को, क्या हमने इसको, हमारी हमारी नजर में इसका क्या मकाम है। फिर तो भूल के गुजार रहे हैं ना आखरत को। मसला ये है सिर्फ, अगर आखरत याद होती ना तो दीन सबसे पहली प्रायोरिटी होती, अगर आखरत याद होती ना तो इस दुनिया के धोखे से निकल आते। दुनिया धोखा नहीं दे सकती उसको जिसका ईमान आखरत पे, जिसको पता है मैंने अल्लाह से मिलना, मुझे क्या पता मेरी शाम भी होनी है जमीन के ऊपर कि नहीं, मुझे नहीं पता। मैंने यकीन जाने अल्लाह की कसम खा के मैं कहती हूँ, मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि सुबह वो अपने घर में बैठे होते हैं अच्छे भले हैं, और शाम उस रात से पहले ना अंधेरा होने से पहले वो कब्र के नीचे होते हैं, कब्र के अंदर होते हैं जमीन के नीचे, सुबह वो बिल्कुल अच्छे भले होते। और आपने भी बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे, जिस बंदे को ये पता हो कि मुझे नहीं पता मेरा नेक्स्ट कदम किधर पड़ना है, मुझे नहीं पता आज रात मैंने अपने घर में करनी है, इस गारे मट्टी के घर में या कब्र के घर में, वो कितना डर के रहेगा। वो कहेगा भाई होती रहेंगी बाकी चीजें तो होती रहेंगी, पहले ये काम मैंने, ये काम नहीं मैं पीछे कर सकती, ये तो मेरी जरूरत है, मुझे क्या पता। अब नौकरी तो करूंगी तो 1 महीने बाद तनख्वाह मिलेगी, तो उससे शायद कुछ बनाऊंगी, मुझे तो ये भी नहीं पता मेरा 1 महीना भी जमीन के ऊपर गुजरेगा कि नहीं, अगर मैं उससे पहले ही चली गई तो क्या होगा। देखिए ना कितनी इंसान की सोच बदल जाती है जब ये यकीन होता है कि मुझे अल्लाह से मुलाकात करनी है। तो तुमने बुलाया हुआ था ना, तुम्हारे पास बूढ़े और धंधे थे याद रखने के, अगर ये नहीं याद रहता था कभी कि अल्लाह से भी मिलना है, बुला के जिंदगी गुजारी, डोंट केयर, जब देखेंगे जब जाएंगे तो देखी जाएगी। बहुत सारे लोग कहते हैं तो ये जन सारी इन्होंने ना मौलवियों ने इतने डरावे बनाए हुए हैं ना, बस ये तो इनका काम ही है डराते रहना, कुछ नहीं होता। अब वो कुछ नहीं होता ना, ये जवाब देखने सुनने इनका, ये जवाब ये क्या देते हैं वो जो जहन्नुम में बैठे हैं, ये क्या उनका जवाब था अभी हमने जो पढ़ा, कि कालू नाम, क्या अल्लाह ने जो वादे किए थे वो तुमने सच पाए। हाँ वाकई जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया था फलां के लिए फलां फलां आजाब और ऐसे ऐसे, वो वाकई सच्ची बात थी। और यहाँ पे कहते नहीं जी इनके डरावे हैं, बहुत डराते हैं ये, बस छोड़ो इनकी तो बातें ही हैं। अमा कानू भी आयातिना यजहदून, और जो वो थे हमारी आयात का इनकार करते, ये उनके जराइम है जो बताए जा रहे हैं, ऐसे ही नहीं ये जहन्नुम में आके इस तरह से इस मकाम को पहुंचे, इस अंजाम को पहुंचे, इसके पीछे देखो क्या है, इनकी लाइफ कैसी थी, ये चार चीजों ने बता दिया क्या था इनकी जिंदगी में। दीन इनके लिए नथिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम है अगर मेरा फातिमा, नाम है मेरा सादिया, नाम है मेरा आयशा, इससे क्या फर्क पड़ता है? जिंदगी चाहे मेरी उसकी जैनी की तरह हो या कोई और जिसका भी नाम ले ले, या पूजा की तरह हो या फलाने की तरह हो, तो फर्क नहीं पड़ता। दीन इनके लिए नथिंग, दुनिया में गुमे में जो याद ही नहीं है, आखरत भी है, और अल्लाह की आयात का इनकार करते थे। तो ये उनकी पूरी लाइफ की कहानी है, अगर आप समझ लें तो एक उनकी लाइफ कैसी होगी आपको समझ आ जाएगी, क्या चीज थी उनकी जिंदगी के अंदर जिसने उनको जहन्नम तक पहुंचाया। आज नहीं कहते इस्लाम तो इतना आसानी का दीन है, अल्लाह गफूर रहीम है, ये बस ये लेक्चरों में ही ऐसे बताते रहते हैं, कोई सख्ती नहीं है इस्लाम में, इतना आसान दीन को देखो कितना इन्होंने बनाया है, खुद ही बना ली ये बातें। कभी इस्लाम पढ़ के भी देखा, कभी कुरान खोल के भी देखा, कुछ नहीं। हमारा दीन को ये कहता है, हमारे दीन को ऐसे कहता है, कोई ऐसी पाबंदियां लगाता है। तो देखिए हम भुला के बैठे रहे और अल्लाह की आयात में बहसें करते रहे और उनको मानते ही नहीं थे, कभी जानने की कोशिश ही नहीं की वो कहती क्या है अल्लाह की आयात, तो मानना तो दूर की बात है। तो ठीक है, अगर दुनिया में तुम्हें नहीं आखरत की कोई फिक्र थी, तो अल्लाह ताला कह देगा कि आज हमें भी तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। फिर ये कुरान को लिफ्ट नहीं कराते थे, ये इस दीन को लिफ्ट नहीं कराते थे, बल्कि कुछ लोगों के लिए तो बड़ी शर्मिंदगी का बायस होता है कि किसी को पता ही ना चल रहा कि हम मुसलमान हैं, ऐसे बन के रहो कि कुछ कुछ जान ही ना सके। यानी उनको इसमें भी शर्म आती है कि हम दिखे भी ना मुसलमान, हम बोले भी कुछ ऐसी बात, इस सलाम ना कर दें इंशाल्लाह, या ये ना कह दें कि किसी को पता चल जाए कि हम मुसलमान हैं। तो जिनके लिए उनका दीन ही एक बोझ है जिसको लेके वो चल रहे हैं, तो ही फिर क्या लाभ और लाभ नहीं है ये, और क्या है, क्या समझा हुआ तुमने अल्लाह के दीन को, ये वैल्यू है उसकी तुम्हारे नजदीक? ये तो फखर का मकाम है कि शुक्र है अल्लाह तूने मुझे ये दीन अता फरमा दिया, मैं तो नहीं पा सकती थी अगर तू ना मुझे अता करता, मैं तो नहीं हिदायत का रास्ता देख सकती थी और उसको चुन सकती थी अगर तू ना मुझे हिदायत दिखाता। ये तो ये जरूरत है कि हम कहें, ना कि हम इस पे शर्मिंदा शर्मिंदा से रहें। अलकद जिना हम भी किताब इन फसल ना हो आला इल्म, और अलबत्ता तहकीक लाए हमें किताब इनके पास, ये ऐसे ही यानी ऐसे ही जहन्नुम में नहीं आ गए, हमने इनके ऊपर हुज्जत तमाम कर दी थी, ये नहीं कि बेकसूर हैं बेचारे, ये क्या करते इनको पता ही नहीं था, नहीं, इनके पास हम लाए थे किताब, फसलना हूँ खोल के बयान की थी हमने इसको, अला इल्म इल्म की बिना पर, हुदा व रहमत लिकौमी युमिनून, उसमें हिदायत भी थी, उसमें रहनुमाई थी, वो किताब बताती थी जन्नत का रास्ता, उसमें रहमत थी, ये रहमा है, ये कुरान रहमा है। हमने समझा कि बस ये एक बोझ है, ये एक मुशक्कत है, इसको पढ़ लिया तो पता नहीं हमारी जिंदगी मुश्किल में आ जाएंगी, अरे भी तो हमें अमल करना पड़ेगा, पता नहीं हमारे सरों पे हिजाब आ जाएंगे, हम क्या मुश्किल में पड़ जाएंगे, नहीं, ये तो रहमत है, अल्लाह ताला फरमाता है ये रहमत है। कौन है जो रहमत नहीं लेना चाहता अपनी जिंदगी में, कौन है? किससे भी पूछे कि आपको रहमत चाहिए अल्लाह की, तो ये कुरान रहमत ही तो है, आओ इसकी तरफ। लेकिन किसके लिए? ले कौमी युमिनून, उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं, उस कौम के लिए जो ईमान लाना चाहती हो या ईमान ला चुकी हो, जो मानती हो इसको कि ये रहमान का कलाम है, इसमें मेरे लिए रहमत है, इसमें मेरे लिए हिदायत है। जो माने ही ना, तो पढ़ पढ़ के कितना मर्जी भी रखते रहे, अब कितने काफरों ने भी पढ़ी नहीं है, एक पढ़ा हुआ कुरान पाक को, ना उससे हिदायत ली क्योंकि उस पर ईमान नहीं था ना, ये रब का कलाम है, ये हक है, ये सच है, यही सच है, ये सबसे बड़ी सच्चाई है। जो इस ईमान के साथ इसको पढ़ ले उसकी जिंदगी बदल जाती है, यकीन जाने उसकी जिंदगी में ये उसको कदम कदम पे ये किताब राह दिखाती है, और इतनी रहमत है इसके अंदर, कैसे इंसान के इस दुनिया के मसाइल में भी उसको थाम लेती है, उसको चला लेती है। ये किताब ना हो तो आप खुद खुद आप जो जो स्टूडेंट्स भी बहुत अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक के साथ जुड़े हैं, वो मानते होंगे इस बात को कि कैसे ये दुखों में थामती है, कैसे ये परेशानियों में फिक्रों में उस वक्त सहारा दे देती है। अब ये हमारा काम ये है कि हम इस किताब के एम्बेसडर बन के खड़े हो जाएं अपने खानदानों में, अपने माशरे में, अपने दोस्त अहबाब में। वो अल्लाह ताला ने हमें अगर चुना है ना ऐसी सोसाइटी के अंदर, तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह चाहता है कि हम आगे बढ़ के काम करें। अल्लाह ताला हमसे करवाना चाहता है कोई काम, वो हमसे कोई लेना चाहता है काम, चाहता है हम अपने लिए सबका जारिया बना दें। तो इसमें हम ये ना सोचें कि हम तो वैसे है नहीं, हमसे तो हो नहीं सकता। नहीं, आप जो भी हैं, जहां भी हैं, आप इस किताब का जब इल्म ले रहे हैं, तो अब आज की जरूरत ये है कि हम टॉर्च बेयरर्स बन जाएं, हम रिप्रेजेंटेटिव बन जाएं इस कुरान के, हम आगे इस पैगाम को लोगों तक पहुंचाएं, अपने खानदानों तक, अपने दोस्तों तक, अपने जो भी हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, हम कुरान को सुनवा दें कम अज कम लोगों को। क्योंकि अल्लाह ताला ने ये किताब भेज के हुज्जत तमाम कर दी है। अब कोई एक्सक्यूज नहीं कोई दे सकेगा कि हाँ, हमें पता नहीं था, हमें क्या पता, हमें कुछ बताया होता तो हम जानते ना। तो इसलिए ये किताब अल्लाह ताला ने दे के हम पर बहुत बड़ी रहमत अपनी नाजिल की है। ये बहुत बड़ी रहमत है, इसको रहमत समझिए, ये हिदायत का सामान है, इसको हिदायत का सामान समझिए। देखिए वो कह रहे हैं अगर अल्लाह ना हमें हिदायत देता तो हम नहीं हिदायत पा सकते थे। ये हिदायत क्या है? ये कुरान है। फरिश्ते आके उतर उतर के हमें नहीं कुछ सिखाएंगे बताएंगे, अल्लाह ने कुरान नाजिल कर दिया। अपनी जिम्मेदारी को समझिए, अब आपकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है जब आप ये कुरान सीख रहे हैं। हल यनुदुरुना इल्ला तावीला। अब देखें एक फाइनल बात कर दी गई, माँ भी बच्चे को समझा समझा के जब एक पॉइंट आता है कि उसके बाद कहती है कि अब तुम क्या चाहते हो, तुम इसी चीज का इंतजार कर रहे हो कि फेल हो जाओ तो फिर ही तुम संभलोगे। अल्लाह ताला ने सारी बातें समझा के फरमाया हल यंदरूना इल्ला तअवीला, क्या वो इसी का इंतजार करते हैं कि ये कि आ जाए उनके पास अंजाम, या नहीं वो इंतजार करते मगर इस अंजाम का, यानी वो और किसी चीज का लगता है कि इनको अब किसी और बात से तो फर्क नहीं पड़ेगा, अब ये यही चाहते हैं कि अंजाम सामने आ जाए, वो अंजाम देखेंगे ही तो फिर ये हटेंगे। क्योंकि तो अल्लाह ताला फरमाते ना फहल अंतुम मुंतहून, क्या तुम बाज आओगे, बाज आते हो कि नहीं आते, कि तुम्हारे पास हिदायत आ गई, तुम्हारे पास ये रहमत की शक्ल में ये किताब आ गई, ये किताब की शक्ल में अल्लाह की रहमत आ गई, फिर भी तुम नहीं मानते, फिर इंतजार किस बात का है? अब तुम उसी चीज का इंतजार कर रहे हो कि जो ये बातें इस किताब में कही गई हैं अब वो सामने आ जाए, अंजाम सामने आ जाए, इसकी तावील का इंतजार करते हो। यौम यती तावीलू, तो सुन लो जिस दिन इस ये अंजाम सामने आ गया ना, जिन बातों से ये किताब डराती है, जो अल्लाह के वादे हैं, अगर नहीं मानोगे तो ये हो जाएगा, जिस दिन वो सारी चीजें सामने आ गई ना, ये तावील सामने आ गई, लगता है इसी का तुम इंतजार कर रहे हो, जिस दिन ये हो गया, यकूलुल्लदीना नसूहू, तो वो लोग जो इसको भूल गए थे, जिन्होंने अपनी जिंदगियों में इसको भुलाया हुआ था, इसको इस तावील को, इस अंजाम को, कि एक दिन कयामत है, एक दिन अल्लाह के आगे खड़े होना है, संभाल लो खुद को, ये जो सारी बातें हम कुराने पाक में पढ़ते हैं, जिस दिन ये सारी सामने आ गई है, जो गैब की खबरें हमें दी जा रही हैं, ये दिन जब सामने आ गया, तो वो लोग जो इसको भूले हुए थे मिन कबलू, इससे पहले, तो वो कहेंगे कद जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक, हाय रसूल तो बिल्कुल सच कहते थे, वो वाकई सच्चे थे। अब देखें इससे पहले किसने ये बात कही, वो जो जन्नत में जाने वाले थे उन्होंने भी यही कहा, उन्होंने जब देखा कि ये तो वाकई वो जो कुरान में हम पढ़ते थे, वाकई वो जो हदीस में, वो बिल्कुल सर। अब ये भी कहेंगे, ये सारे अंजाम देख के, ये जो सारे मनाजिर देख के कहेंगे, वाकई ये सब सच है, यही बातें तो हम बताई जाती थी रसूल कुरान लेकर, यानी रसूल ने क्या दिया, अल्लाह का पैगाम दिया कुरान की शक्ल में और हदीस, सब सच था, उस दिन यकीन हो जाएगा। आज नहीं ना मानते, आज लगता है कि पता नहीं ऐसे ही कुछ बातें ही हैं, आज लगता है ना कोई ऐसे ही सुना रहा है, पता नहीं जन्नत की बातें कोई फेरी टेल्स हैं या पता नहीं जहन्नम की बातें, ऐसी डरावे हैं। जिस दिन गैब का पर्दा हट गया उस दिन इंसान को समझ आ जाएगी कि ये तो सब सही था, सब बातें बिल्कुल हक थी, बिल्कुल रसूल ने सच्ची बात की थी। हमने ही इग्नोर किया तो अब क्या है, फहल्ला ना मिन शुफा, तो अब क्या हमारे लिए कोई सिफारिशी है, फयशफाउ लना, जो सिफारिश करें हमारी, लेकिन उस दिन सिफारिश तो किसी को काम ना आएगी क्या, सिवाय उसके जिसके लिए अल्लाह ही इज्जत दे, कोई हमारी सिफारिश ही कर दे। अब देखिए दुनिया में जैसे वो सोचते थे कि सिफारिशें करके कुछ भी हासिल हो जाता था, वो ढूंढेंगे कि अब कोई सिफारिश ही मिल जाए हमारा यहाँ पे, अनुरादु, या अगर नहीं कोई सिफारिश करता तो हमें ही वापस लौटा दिया जाए, फनामल गैर अल्लादी कुन्ना नामल, तो हम वो अमल करें जो इससे पहले हम नहीं करते थे, जो सिवाय उसके जो हम करते थे, यानी जो हम दुनिया में करते थे उसके सिवा कोई और अमल करें। अच्छा वो ये नहीं कह रहे कि हम नेक अमल करें, इस बात से उनकी देखे हर बात में कितनी डेप्थ है, इससे पता चलता है कि नाउ दे रियलाइज, उनको अब यकीन हो गया कि जो हम करके आए वो सब गलत था, जिसकी वो बड़ी तावीलें उस वक्त देते थे, जिसको वो सही समझते थे, जिसके जो जो करते भी उन्होंने जिंदगी गुजारी, जो उनका लाइफ स्टाइल था, जो उनके तरीके थे, जिस तरह वो चलते थे, वो उसको सही मानते थे ना, और बड़े लोगों से बहसें करते थे कि हम ही ठीक हैं। आज कह रहे हैं हम वो नहीं करना चाहते जो हम करते थे, हम कुछ और करके आए, चाहे उनको नहीं भी पता कि कुछ और क्या करना चाहिए, नेक अमल करना चाहिए वो कैसे होगा, पर उनको ये जरूर पता है कि वो सब गलत था, वो नहीं करना था, वो मान रहे हैं कि वो गलत था, और दुनिया में कभी मानते ही नहीं। अल्लाह अकबर, कद खसीरू अनफुसहम, तो स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है कि इन्होंने अपने आप को खुद ही खसारे में डाल दिया। नुकसान देखें, एक तो कोई आपका नुकसान करे तो समझ भी आती है कि ये दुश्मन था, ये था, खुद ही इंसान अपने आप को बर्बाद कर ले अपने हाथों से, अपनी इटर्नल लाइफ, कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी को आग लगा बैठे तो उसको क्या कहेंगे, जो अपनी आखिरत की तरफ तवज्जो ही ना करे, उसके लिए टाइम ही ना निकाले, फिर इसी तरह की हसरतें होंगी कि अब वापस भेज दो, हम कुछ जाके और करें, लेकिन क्या भेजा जाएगा, नहीं, ये हसरत है उनकी, ये उनकी फरियाद होगी कि एक दफा तो वापस भेज, हम नहीं वैसे वो वाले काम तो हम अब कब करेंगे ही नहीं कभी, ये होती है एक गाफिल इंसान की तमन्ना। पता चल गई ना आपको कि उस दिन क्या होगी, इन गफलतों का अंजाम क्या है, कि उस दिन इंसान कैसे ये एक दफा चाहेगा कि बस मुझे वापस जाने दिया जाए, क्योंकि अब वो जाग गया है ना, अब नजर आ गया, तो अल्लाह ताला ने यही फरमाया ना, जिस दिन ये बड़ा ये इंतजार कर रहे हैं कि ये सारा कुछ हो जाए तो फिर ही हटेंगे, तो जिस दिन हो गया तो उस दिन वापस जाना भी चाहेंगे तो कोई वापस नहीं जा सकेंगे, उस दिन अमल बदलना भी चाहें तो नहीं बदल सकेंगे, आज बदलने का वक्त है, इन्होंने तो खुद ही अपने आप को नुकसान में डाल लिया, बदलान और खो गए उनसे जो थे वो घड़ते, और दलीलें, वो बड़ी बड़ी बातें, बढ़ चढ़ के बातें करना, आपको क्या पता, उसको क्या पता, हमें पता है, इन मौलवियों को क्या पता, इनको क्या पता, इनके तो लेक्चर हैं, इनके तो ये, सारी बातें हम कह देंगे अल्लाह को जाके वहां पे, कहाँ गुम हो गई पता भी नहीं चलेगा। तो खुलासा सारा क्या हुआ, कितनी जबरदस्त तरीके से यहाँ पे सारी दुनिया की जिंदगी की हकीकत कैसे खोल दी गई, कैसे इंसान यहाँ पे भूला रहता है, कितनी कुछ चीजें हैं जिसमें मगन रहता है, हर वो असल आखरत को भूल जाता है, कैसे अल्लाह ताला ने एक एक सीन दिखाया है, एक एक सीन दिखा के एक डायलॉग हमें बताया है, वो ये बोलेंगे, वो ये कहेंगे, देखो इससे पहले ही संभल जाओ, क्या तुम्हें यही चाहिए कि ये हो जाए तब संभलोगे। अल्लाह अकबर, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء لا تفتح لهم أبواب السماء إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنا لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون